लघुवासुदेव मननम प्रारंभ में बता दिया। प्रत्येक वेदांत के शास्त्रों में, वेदांत के ग्रंथों में जो जो अधिकारी अनुबंध चतुष्टय आदि होने चाहिए वही यहां पर भी समझ लेवे। और इन सब की आवश्यकता क्यों है ये आप लोगों ने सुना। ग्रंथ पढ़ने में वही व्यक्ति प्रवृत्त होगा जिसके अंदर अनुबंध चतुष्टयता होगी, और अनुबंध चतुष्टय पूर्वक जब साधन चतुष्टय संपन्नता आएगी तभी वह जो मोक्ष नामक परम पुरुषार्थ है उसको वह प्राप्त करके जीवन मुक्त होकर आनंद की स्थिति में रहेगा। जो हमारे दुखों का कारण है वह मूल अज्ञान जब निवृत्त हो जाए तो अपने मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वह प्राप्त हो गया। समझ लीजिए अपना जन्म लेना सफल हो गया। जिसके लिए ये जन्म मिला उसकी सफलता इसी में है कि स्वरूप का ज्ञान हो जाए, मैं कौन हूं, और इस वृत्ति का सदा अनुसंधान करना है। इसलिए हमारे ग्रंथों का नाम ही है तत्वानुसंधानम, आत्मानुसंधानम। ये सब ग्रंथ हैं किस प्रकार से अनुसंधान करना चाहिए अपने आप का, ये सब उसमें विस्तार से बताया है। साधन चतुष्टय संपन्नता के अंतर्गत जो अधिकारी हैं जिसके अंदर ये चार चीजें हों, विवेक वैराग्य समाधि षटक और मुमुक्षुता, समाधि षटक संपत्ति समझ रहे हैं सही, सम की प्राप्ति कैसे होती है तो कहा अन्य विषयों को न सुनकर केवल आध्यात्मिक शास्त्र आदि को श्रवण करके अपने मन को उसमें लगाना, अर्थात मन लगा करके श्रवण करना अथवा सुन करके उसमें मन को लगाना, दोनों बात एक साथ ही होगी। सुन करके बाद में मन किस में लगाओगे यदि ठीक से सुना हुआ नहीं होगा तो। इसलिए श्रवण करने का मतलब ही है कि जिस समय हम सुनते हैं उस समय मन को लगा करके ही सुनना है। केवल आवाज कान में आए उसको सुनेंगे तो वो श्रवण नहीं होगा। गाड़ी की आवाज भी आ रही थी ये भी श्रवण होने लग जाएगा, इसको श्रवण नहीं बोलते। जो आवाज सुनाई दे उतने मात्र का नाम श्रवण नहीं, बल्कि जिसको सुन करके अर्थ का बोध हो और मन में एक तदाकाराकारित वृत्ति बने तब जाकर के वह श्रवण कहलाता है। ये श्रवण ही अपने आप में शमन है। ठीक से श्रवण करेंगे तो मन अपने आप शांत होगा। अशांत मन से तो श्रवण हो ही नहीं सकता है। श्रवण करने जा रहे हो आप, इसका मतलब आपका मन शांत है। उदाहरण के लिए अभी हम यहां सब बैठे हैं, प्रातःकाल एकत्रित होते हैं, इस समय अपने मन में कुछ बेचैनी हो तो आप लघुवासुदेव मननम सुनोगे क्या? उधर ही ध्यान जाएगा बार बार। इसलिए सम का अर्थ क्या, समो नाम श्रवणादि व्यतिरिक्तेभ्यो निवर्त्य आत्मनि एव श्रवणादि विषये मनसः स्थापनम्, मन की स्थापना उसमें हो। दम नाम किसका है तो ज्ञान और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को निग्रहित करने का नाम ही है दम। उपरतिर नाम संन्यासो निष्काम कर्मानुष्ठानम व्यवहार लोपो वा, ये संन्यास व्यवहार लोप हो जाना ये उपरति का स्वरूप बता दिया। और वैराग्य का कितना अच्छा बताया था कल, वो तो ध्यान में है ना, कुत्ते की उल्टी के समान। और दूसरा अर्थ क्या था, वैरस्य। वैरस्य का मतलब होता है नितांत अरुचि, नित्य निरंतर उसमें अरुचि होना। ऐसा नहीं आज अरुचि कल फिर रुचि, ये नहीं हो सकता। नितांत जिसमें अरुचि हो उसी को वैरस्य बोलते हैं और ये वैराग्य का वास्तविक स्वरूप है। तितिक्षा नाम प्रारब्ध आगत शीतोष्णादि सहनम, ये जो लोगों से मिलना जुलना सर्दी गर्मी का सामना करना ये सब हमारे प्रारब्ध ही तो है। मान लीजिए आप यहां से कहीं अच्छे मौसम के हिसाब से जाते हो कि वहां जाएंगे तो अच्छा मौसम मिलेगा, और जिस दिन पहुंचे उसी दिन बंटाडार हो गया वहां। वहां के लोग भी बोलते क्या कहूं जी, कल तक इतना अच्छा मौसम था आज ही खराब हुआ है। तो हम क्या करें भाई, कल तक अच्छा रहा होगा उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो आज मौसम अच्छा चाहिए था, अब आज ही खराब हुआ है। रसोईया ने भोजन बनाया कुछ गड़बड़ हो गया, क्या कहूं जी रसोईया इतना अच्छा भोजन बनाता है आज पता नहीं क्या हो गया, कैसे भोजन खराब हो गया। तो हम पीछे का क्यों सोचे, वो तो कल हुआ और कल होगा, वर्तमान में तो बात नहीं बनी ना। तो वहां पर सबसे अच्छा है समझ लो कि अपना प्रारब्ध ही ऐसा है। यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तनुमार्जी तुम कक्षमा, भर्तृहरि जी बोलते हैं विधाता ने जो भाग्य में लिखा है ना उसका मार्जन कोई कर नहीं सकता है। हम लोग प्रयास तो यही करते रहते हैं दिन रात, सुख ही मिले दुख न मिले। भागवत में जगह प्रसंग आया है, भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव जी को बता रहे थे कि ज्ञानी हो भक्त हो कर्म करने वाले हो सबके लिए तितिक्षा का कितना महत्व है जीवन में, तितिक्षु बनना, क्योंकि सब कुछ करने को हम लोग तैयार होते हैं लेकिन जब कोई बात सहन करने की आ जाए वह सबके लिए बहुत कठिन है। और वहां उदाहरण जो दिया है भगवान ने, कहने लगे उद्धव उज्जैन में था कोई ऐसा व्यक्ति, आप लोग सुने हो उज्जैन में कोई ऐसा व्यक्ति था, वो भागवत में ही हो, उद्धव जी को बता रहे भगवान कृष्ण, वो दूसरे कोई ब्राह्मण थे, नाम भी वहां कुछ दिया ऐसा। ये सुदामा जी तो उधर द्वारका में हुए, वहां तो सांदीपनी जी भी हुए ना उज्जैन में, तो उज्जैन के कोई ब्राह्मण थे बड़े धनवान, ना खाए ना किसी को खाने दे, घर वाले भी सब परेशान। अच्छा आपके पास माल हो ना, घर वाले को मालूम है इनके पास है, ना दो तो वह भी हमारा अनिष्ट चिंतन करते हैं कि ये कब जाए तो अपने हाथ में आए, और इसलिए कोई अपना अनिष्ट चिंतन न करे तो थोड़ा थोड़ा डालते रहो जिससे उनकी बुरी नजर न पड़े, ये जीने का तरीका है। अब पूरे उसके ऊपर फन फैला के बैठ जाओगे तो क्या होगा, वो केवल जैसे यक्षपति धन का रखवाला होता है ऐसे उस यक्षराजों में अपना भी नाम आएगा। चौकीदारी कर रहे हो तो अत्यावश्यक जहां हो वहां भी नहीं निकालता था। कुछ लोग होते हैं दूसरे के लिए नहीं निकालते, अपने लिए करते हैं, तो अपने लिए भी नहीं करता था। यहां तक कि पंचबली जो बलि वैष्णोदेव यज्ञ होता है ना, देवता लोग नाराज हो गए, बोले इतना कृपण आदमी, तो उसके पुण्य के प्रताप से जब तक धन टिकने का उसका योग था तब तक तो कुछ बिगड़ा नहीं, इकट्ठा होता ही रहा, लोग भले उसका इष्ट चिंतन करे, घर वाले आसपास के लोग है इसके पास, न देता है न खाता है न खिलाता है, क्या करेगा। अब देवता लोग जब कुपित हुए बोले अब तो इसकी संपत्ति को तितर बितर करना पड़ेगा। जब समय आया महाराज तो धन की जो तीन गति है ना, उत्तम गति है दान, मध्यम गति है उपभोग, अधम गति है नाश, नष्ट होने लगा। चोरी हो गई, घर वालों ने भी लूट लिया, और सबने जबरदस्ती लिया है ना, तो कोई उपकार तो आपने किया नहीं, ले तो लिया ही लोगों ने, उल्टा उससे मुंह भी बनाने लगे, मुंह फेर दिया, भाई हमने लिया है तो अपने पुरुषार्थ से लिया, इसने अपने आप तो दिया नहीं। अब जो वह सबके उपेक्षा का शिकार हुआ, पूरा हाथ खाली दरिद्र हो गया, लेकिन कुछ पूर्व जन्म के पुण्य भी थे उसके, उसको ये समझ में आया कि धन होने से पहले और धन जाने के बाद हमारा मनोभाव कैसा होता है, मनोवृत्ति। उस समय उसको परमेश्वर के सिवाय कोई दूसरे दिखाई नहीं दिए। मरता क्या नहीं करता बोलते हैं ना, अंतिम समय में जब आपको कोई सहारा नहीं दिखाई देता तो सिवाय परमेश्वर की कोई दूसरे हमें याद आते नहीं। उस समय उसको लगा कि अब परमेश्वर के शरण में जाना ही ठीक है। नियम बना लिया कि अब भिक्षा मांग करके खाना और चाहे कोई कुछ भी कहे सबको सहन करना। भगवान ये उदाहरण सुना रहे हैं उद्धव जी को। वह इतना धनवान आदमी था, घर वालों ने लूट लिया, सबने मुंह फेर लिया, पास में कुछ भी नहीं, जिस बर्तन आदि से भिक्षा मांगे कभी कोई बर्तन उठा ले जाए, कभी उसे कपड़े उठा के ले जाए, लोग ताना मारे, जब था तो किसी को दिया नहीं, अब इसने दूसरा धंधा शुरू कर दिया, भिक्षा करके गुजारा कर रहा है, ये भी इसका धंधा है। खूब ताना मारते थे, गाली देते थे, यहां तक वहां भगवान सुनाते उद्धव जी को कि उसके ऊपर लोग मलमूत्र आदि भी कर देते थे। लेकिन वह मन में यही सोचता था कि जब पुण्य था तब धन था मेरे पास, उस समय हमने कुछ किया नहीं, और अभी तो हमारे लिए यही नेत्रांजन है, अंजन है आंख खोलने के लिए कि अपने किए हुए कर्म का फल स्वयं को भुगतना पड़ता है। पहले जो हमने कुछ नहीं किया, अब इस समय जो हमें फल मिल रहा है अपने किए हुए कर्मों का फल है, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई अपने लिए उपकार करे चाहे अपकार करे, उपकार करने वाले को भले ही थोड़ा धन्यवाद तो दे ही दो कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मन में ये जरूर सोचना कि अपने कुछ ऐसे पुण्य कर्म थे जिसके लिए व्यक्ति निमित्त बना और मेरे लिए इसने कुछ किया। सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा, ये श्लोक सुने होंगे। सुखस्य और दुखस्य दोनों का नाम लिया, इसीलिए ना तो कोई हमें सुख देता है ना ही कोई हमें दुख देता है। परह ददाति इति, दूसरों से हमें सुख मिला अथवा दुख मिला, कुबुद्धि ऐसा, ये सद्बुद्धि नहीं है, कुबुद्धि है। अहम करोमि इति वृथा अभिमान, मैं करता हूं ये व्यर्थ का अभिमान है। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक, प्रत्येक व्यक्ति इस लोक में अपने अपने कर्म रूपी धागे से बंधे हुए हैं। इस बात को जिसने गांठ बना के अपने मन में रख लिया कि कोई भी सुख अथवा दुख मिल रहा है अपने किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए जो मिला प्रारब्ध आगत, जो यहां लिख रहे हैं वासुदेव यति, कि प्रारब्ध के अनुसार आया हुआ जो कुछ भी शीत और उष्ण आदि हैं, आदि से सब कुछ ले लीजिए, क्योंकि जगह जगह तितिक्षा का अलग अलग अर्थ किया है। तितिक्षा का ही दूसरा नाम है सहिष्णुता, जिसको आजकल टोलरेंट इनटोलरेंट क्या बोल रहे थे, टोलरेंस इनटोलरेंस, और जो सहन करे वो टोलरेंट हो जाएगा, कर्ता के अर्थ में कर्म में टोलरेंस होगा, तो इनटोलरेंस टोलरेंस। खूब इसके ऊपर पूरे भारत में विवाद हुआ एक सामान्य बात को लेकर के, लेकिन यहां जो टॉलरेंस है, सहिष्णुता, सहन करने की इच्छा शक्ति, हां सहनम सर्व दुखानाम, इसी को सहिष्णुता बोलते हैं। सहिष्णु सर्व दुखानाम, संपूर्ण दुखों को सहन करना। छोटे छोटे दुख को तो हम लोग झेल ही लेते हैं प्राय हम सोचते हैं कि हे भगवान बड़े दुख का सामना न करना पड़े, सबकी यही इच्छा है, लेकिन जब आ ही जाए आ जाता ही है, उस समय हमें ये बात याद रखनी है कि जिसने अभी तक स्वस्थ रखा अब उसी ने अस्वस्थ कर दिया। जाने का समय होता है, अब कई लोग ऐसे होते हैं जब कोई गुजर जाता है तो बोलते क्या हुआ था इनको, कैसे गए। एक कोई सुना रहे थे, बोले एक आदमी चला गया, उसके बेटे लोग तो वहां बेचारे सफेद कपड़े पहन के सिर मुड़ा के बैठे थे। अब एक कोई आदमी आया तो बोले आप लोग तिरुपति बालाजी गए थे क्या, देख रहे वहां पिताजी के फोटो भी रख के बैठे हैं, वो कर रहे हैं। कितने साल के थे, बोले 90 साल के थे, जल्दी चले गए। अब 90 साल जल्दी होता है, कैसे गए। तो सामने वाले को भी थोड़ा बुरा लगा, बोले क्रिकेट खेलते हुए गए, और कैसे गए। बोले हम मजाक कर रहे हो, तो बोले तुम भी तो ऐसे पूछ रहे हो, जब चले गए तो गए ना। तो जिसका कोई जाता है उसके ऊपर जो बीतती है उसमें घाव में नमक छिड़कने वाली बात है, जैसा है शांत रहो। लेकिन कुछ लोगों को है बोलने की आदत होती, चले गए कैसे गए क्यों गए कब गए, सुना तो था हमको, तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे गए हो। विश्वास होता है क्या कभी, कल किसी से बात कर रहे सवेरे पता चला रात में चले गए। सर्व दुखानाम सहनम और अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार भी नहीं करना है। प्रतिकार का मतलब वहां यही है, अरे बहुत बारिश हो रही है पता नहीं क्या है कब बारिश रुकेगी, ऐसा नहीं। और चिंता विलाप रहितम, कोई चिंता नहीं करना विलाप नहीं करना। सा तितिक्षा निगद्यते, इसका ही नाम है तितिक्षा। इतने बड़े बड़े वेदांत ग्रंथों को पढ़ना सुनना तो आसान है, लेकिन जो प्रारंभिक चीजें हैं ना, साधक के अवस्था में जिन जिन साधनों की आवश्यकता है वही सिद्धावस्था में काम में आएंगे। ज्ञान होने के बाद कैसे रहना चाहिए वो पहले, ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही आचार्यों ने इस बात पर जोर दिया है। जिस जीवन मुक्ति का अनुभव हमें करना है, ज्ञान होने के बाद जो स्थिति होती है वो इन साधनों से ही अपने आप को स्थिति आ जाती है। तो दिखता तो ऐसा है कि ये केवल साधकों के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। ज्ञानी इसी रास्ते से गुजरे हैं तब जाके वो ज्ञानी है। जैसे सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानी तानी एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्, ऐसा आचार्य शंकर गीता के जहां पर स्थित प्रज्ञ का लक्षण किया वहां के भाष्य में ये पंक्ति आती, बहुत अच्छी पंक्ति है, तो आप लोग भी याद कर लेना कि सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र में जहां कहीं पर भी साधनों की बात आती है तो सबसे अच्छा साधन क्या है कि जो कृतार्थों के जीवन में लक्षण दिखता है, ज्ञानियों के जीवन में जो लक्षण दिखता है वही हम लोगों के लिए साधन है। क्यों? क्योंकि यत्न साध्यत्वात्। उदाहरण के लिए आप अपने घर की बात सोच लो थोड़ी देर के लिए। जैसे भाई भाई में नहीं बनती है, आजकल तो साझा परिवार है ही नहीं, लेकिन जहां है भी, और उस भाई को माता पिता सहन करते हैं तो छोटा भाई ये सोच के सहन कर लेवे, जब माता पिता उसको सहन करते तो हमें क्या परेशानी है, हम भी झेल लेंगे। ये जो सोचने वाली बात है बहुत अच्छा सूत्र है ये। कोई व्यक्ति खड़ूस है और उसको सब लोग झेल रहे हैं तो अपने को झेलने में क्या परेशानी। आश्रम में कोई एक सज्जन आए और उनकी आदत बहुत खराब थी, गर्मी के टाइम में सबको कूलर पंखे चाहिए, अब वो दिल्ली का रहने वाला एयर कंडीशन में आश्रम में आए, एसी तो था नहीं, कूलर भी उसको जल्दी मिला नहीं, तो जिस कमरे में लोग सो रहे थे वहां से लगा हुआ कूलर उठा के ले गया। अब वो लोग परेशान जिनके कमरे में लगा था, वो लोग कोठारी के पास जाकर शिकायत किए। कोठारी को पहले से पता था कि ये थोड़ा ज्यादा ही सुविधा भोगी है, वो गुस्सा आ गया, गुस्से में जाकर उसको बहुत भला बुरा कह दिया कि अरे मानवता नाम की कोई चीज होती है, लोग लेटे हुए सो रहे हैं, कम से कम ले ही जाते, उनसे पूछ के ले जाते ऐसे तुम जबरदस्ती उठाए तो चोरी जैसा काम हुआ। इतना ही बोला था वो एकदम फपक फपक के रोने लगा जैसे किसी ने उसको मार दिया और चला गया महाराज जी के पास। महाराज जी कोठारी ने हमको बहुत भला बुरा कहा, क्या हुआ? बोले हमने वहां से कूलर उठाया था इसीलिए। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है, महाराज समझ तो गए कि गलती तो इसी की है, फिर भी अब क्या बोले उसको। बोले ठीक है कोई बात नहीं, कोठारी को समझा देंगे। कोठारी को बुला के बोले कि मेरे से पहले वाले जो गुरुजी थे उन्होंने भी इसको झेला, मेरे गुरुजी के जो गुरुजी थे उन्होंने भी इसको झेला। ये परंपरा से जुड़े हुए भक्त हैं अपने आश्रम के, हमारे दादा परदादा गुरुओं ने इसको झेला है, अब तो ऐसे स्वयं ही बूढ़ा हो चुका है और इसीलिए मैं भी झेल रहा हूं। तो जब हमारे गुरुओं ने झेला मैं झेल रहा हूं तो तुम्हें झेलने में क्या परेशानी हो रही है, तुम भी झेल लो। हम लोग क्या सोचते हैं कि यदि अभी नहीं इसको ठीक करेंगे तो आगे मामला और ना खराब हो जाए। आगे मामला खराब न हो जाए उसके लिए हम अपने आप को खराब क्यों करें, यह सोचने की बात है। बहुत सारे व्यवहार की बातें हैं, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे हम। छोटी छोटी बातें हैं जो अप्रतिकार पूर्वकम तितिक्षा की जब बात आती है बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने उद्धव जी को बताया कि उस व्यक्ति ने कभी किसी के लिए कुछ बोला ही नहीं, सबको अपने ऊपर ही ले लिया कि ये सब अपने किए हुए कर्मों का फल है, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। और हम लोग दिन रात यही खोजते रहते हैं कि अच्छा काम हो तो अपना नाम आवे और खराब काम हो तो दूसरे का नाम लगे, अपना नाम नहीं आना चाहिए, फिर तितिक्षा कैसे होगी। इसलिए प्रारब्ध आगत शीतोष्णादि सहनम समाधानम नाम, समाधान किसका नाम है? तो श्रवणादि अनुकूल विषय, जैसे सुनने लगे, और हम लोग यही सुनना ही चाहते हैं, यही पता करने के लिए यहां आते हैं कि हम हैं कौन, किस लिए दुनिया में आए हुए हैं। बाकी तो दुनिया में रहने की बात करते हैं, आप यहां जब आते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि यहां से जाने के बाद हमारा क्या होगा, यहां से हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। ऐसे आध्यात्मिक चर्चा ये अपने अनुकूल विषय है, और इससे जो मन समाधिस्थ हो जाए, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र परमम परम, मन के बारे में बहुत कुछ लिखा है शास्त्रों में, इसी का नाम है समाधान। जो हम सुनना चाहते थे वो हमें मिल गया। श्रद्धा नाम गुरु वेदांत वाक्य विश्वास, जैसे वहां आता है गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, यहां लिखा गुरु वेदांत वाक्य विश्वास। गुरु ने जिस वेदांत वाक्यों के द्वारा उपदेश दिया उसमें विश्वास होना, यही श्रद्धा का स्वरूप है। कई जगह आचार्यों ने सावधान किया, जैसे लिखा है आचार्यवान पुरुषो वेद, वह पुरुष परमात्मा आचार्य के द्वारा ही जानने के योग्य है। आचार्याध्येव साधिष्ठम प्राप्ता, ऐसा आता है आचार्यों के द्वारा वह प्राप्त किया जाता है। आगे उसका उपाय बताएंगे कैसे जाना चाहिए। इति समाधि षटकम हो गया, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये छह चीजें हैं। विवेक नित्यानित्य वस्तु का विवेक, ब्रह्म ही सत्यम जगत अनित्यम, ब्रह्म ही सत्य है नित्य है और जगत अनित्य है। इह अमुत्र फल भोग विराग, इस लोक में और परलोक संबंधी कर्म फल के द्वारा मिलने वाले भोग में वैरस्य होना, अरुचि होने का नाम है वैराग्य। विवेक वैराग्य और सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, सम आदि षट संपत्ति, ये हो तीन हो गए, और चौथा है मुमुक्षुता। मोक्ष की इच्छा कैसी होनी चाहिए? गृहे दह्यमाने, घर में आग लगी है, घर जल रहा है, तत्रस्थो दह्यमानः पुरुषः, जब घर में आग लगती है तो अपना शरीर जलने लगता है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन वहां हम क्या करते हैं, यथा कलत्र पुत्रादिकम परित्यज्य, अपने पत्नी बच्चे सबको छोड़कर पहले स्वयं को बचाते हैं। घर में जब आग लगती क्या करते हैं, पहले स्वयं वहां से भागते हैं। स्वताप उपशमनार्थम, अपने ऊपर जो अग्नि की गर्मी लग रही है उससे बचने के लिए घर से हम छटपटा के बाहर भागते हैं। बहिर्निर्गत्य तापोपशमनम कर्तुम इच्छति, जैसे हम अपने ताप को शमन करने के लिए घर से बाहर भागते हैं, इसी प्रकार से सांसारिक ताप से बचने के लिए संपादयितुम त्यक्त सर्वैषणस्य ब्रह्म तादात्म्य भावे मोक्षे तीव्र इच्छा मुमुक्षा, ये होना चाहिए। विवेक चूड़ामणि में शायद सबसे अंतिम वाला श्लोक है ये। संसारात ध्वनि ताप भानु किरण क्रोध भूत दाह व्यथा, एयर कंडीशन की हवा तब अच्छी लगती है जब बाहर की गर्मी खाते आओ ना, तब मजा आता है। पहले से ठंडी हो और ऊपर से एसी कोई चला देवे तो अच्छा लगेगा क्या, या पहले से गर्मी हो और बोले आओ जी हीटर चला देता हूं आपके लिए, बोले यार पहले से गर्मी से मर रहे ऊपर से हीटर क्यों चला रहा है। हीटर का महत्व तो तब है जब जनवरी के कड़ाके की ठंड हो और उस समय अलाव तापो हीटर लगाओ तो अच्छा लगता है। ये संसार हमें तब तक अच्छा लगता है जब तक उस परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। अज्ञान में पड़े रहने से यही हमें सत्य प्रतीत होता है। भागवत की कथा में एक जगह बहुत सुंदर प्रसंग आया, ज्यादा मैं उसमें नहीं जाऊंगा, एक ही बात कहता हूं। जब मुचकुंद का भगवान से मिलन हुआ काल यवन के मरने के बाद, वहां मुचकुंद ने भगवान से पूछा आपका परिचय क्या है। भगवान ने कहा हमारे अनंत नाम है, अनंत जन्म है, सनक सनंदन आदि भी नहीं जान पाते, यहां तक कि मैं स्वयं भी नहीं जानता हूं, लेकिन आपने पूछ लिया है तो वसुदेव जी के घर में पैदा होने से मुझे लोग वासुदेव कहते हैं, यदुवंशियों के वहां मेरा जन्म हुआ आदि आदि। भगवान उसके बाद ही शायद द्वारका गए, जरासंध से भाग के तो काल यवन को ले गए थे ना उधर। तो जब मुचकुंद ने उसमें स्तुति की तो उसमें बहुत अच्छी बात कही है, बोले भगवान आप हैं सबको मोक्ष देने वाले, और मोक्ष से बढ़कर के बड़ा वरदान कुछ हो नहीं सकता है। फिर भी इस बात को जानते हुए जो लोग आपसे अन्य वर मांगते हैं इससे बड़ी मूढ़ता और क्या होगी। जिसके पास समर्थ हो उससे यदि आप वो काम करवा लो तो यही तो अपनी बुद्धिमत्ता है। लेकिन वरदान मांगते समय में भगवान अपनी माया का ऐसा पर्दा डाल देते हैं। इस बात का पश्चाताप ध्रुव जी को हुआ बाद में, कितना तप किया सब कुछ किया लेकिन मन में विमाता के प्रति जो प्रतिकार की भावना थी इसी वजह से मैं तुच्छ वर मांगा, नहीं तो जो स्वयं मोक्ष स्वरूप है उनसे तो हमें वही मांगना था, ये हमने क्या मांग डाला। तो बाद में पश्चाताप होता है। विमोहितोयम जन ईश मायया, हे भगवान आपकी माया के द्वारा ये संसार के समस्त प्राणी जिसने जन्म लिया उसका नाम जन है। जनी प्रादुर्भावे से जन्म शब्द बनता है और इसी से बोलते कितने जन हैं, कितने लोग हैं। तो लोग तो हिंदी का हो गया, जन संस्कृत का है। जिसने जन्म लिया उसका नाम क्या पड़ा, जन। तो जो भी जन्म लेता है वह आपके माया के द्वारा मोहित हो जाता है जन्म लेते समय, क्योंकि गर्भ में परमेश्वर का दर्शन होता है और वहां हमें पता चलता है कि इससे कितने पिछले हमारे जन्म हुए। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बाहर निकलते ही सीधे प्रेमपुरी अध्यात्म भवन जाएंगे। लेकिन यह हम कब आते हैं, बाद में, पहले संसार देख लेते हैं। तो यही विमोहितोयम जन ई समायया, त्वदीयया त्वाम न भजत त्यनर्थदृक्। अनर्थ को देखने वाला जो दृष्टा है, संसार जो दिखाई दे रहा है, ये अर्थ दिखाई दे रहा है कि अनर्थ दिखाई दे रहा है, इसे इसका नाम रख दिया। वहां पर मुचकुंद बोलते हैं कि त्वदीयया, आपकी माया से मोहित होने के कारण त्वाम न भजती, आपका भजन नहीं करते, बल्कि किसमें ध्यान रहता है, अनर्थ दृक्, अनर्थ को देखते रहते हैं। और इससे क्या चाहते हैं वो, सुखाय दुख प्रभवेशु सज्जते, सुख के लिए प्रयास तो करते हैं लेकिन पैदा क्या होता है, दुख। यही दिन रात हम लोगों का काम है, कोशिश तो करते रहते सुख मिले और उत्पन्न क्या होता रहता है, दुख। कोई भी चीज आप देख लेना, बनाते समय बड़ा अच्छा लगता है, जब वो टूटता है तो दुख होता है, चाहे वो संबंध बनाने की, रिश्ते बनाने की बात हो, चाहे मकान बनाने की बात हो, चाहे दुनिया में संपर्क बनाने की बात हो, बनाना ही तो बोलते संपर्क बनाओ, संपर्क बढ़ाओ, भोजन बनाओ की तरह ही तो है ये सब। तो हिंदी भाषा में ध्यान दोगे तो अपने आप मालूम पड़ता है क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो जो हम लोग बनाते हैं, जब ये टूटता है, छूटता है, तो मिलता क्या है, दुख। सुखाय दुख प्रभवेशु सज्जते, गृहेशु योषित पुरुषश्च वंचित। जो जो घरों में आसक्त होकर के रह रहे हैं, वह चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वे सब के सब आपके माया से ठगे गए हैं। ये मुचकुंद जी भगवान को बोलते हैं, 12-13 श्लोकों में स्तुति की है और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें। भागवत की कथा तो वास्तव में आराम से सुनना चाहिए, मुचकुंद के साथ भगवान का मिलाप हुआ है तो उससे भी कितनी अच्छी बातें हुई है। जब जब भगवान जहां जहां गए हैं और भगवान के साथ जो संवाद हुआ है, उसको जब आप आराम से पढ़ोगे सुनोगे, तब पता चलता है कि सुखदेव जी ने 7 दिनों में परीक्षित को लगातार कथा सुनाई थी, न तो बीच में कोई भंडारा हुआ था, हाँ कुछ था ही नहीं वहां मामला, सीधा कथा का चक्कर था। तो चाहे 7 दिन की जगह 15 दिन क्यों न लग जाए, लेकिन पूरे भागवत में क्या अभिप्राय है, वेद स्तुति आदि हम लोग कर ही नहीं पाते, 5वें स्कंद को तो छू भी नहीं पाते। 5वें स्कंद में जब 7 लोकों का वर्णन आता है, 14 भुवनों का वर्णन आता है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, उसमें कौन कौन लोग थे, वहां के लोग आज भी है सब, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ऊपर के लोग देखो, हम लोगों से तो मृत्यु लोग से केवल 100 योजन की दूरी पे अंतरिक्ष है, जहां अभी हमारा विमान अभी भी नहीं पहुंच पाता, उससे नीचे ही उड़ता है तो बोलते हैं बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, पक्षी आदि भी इससे उससे ऊपर चले जाओ तो 13,000 योजन, 100 योजन अंतरिक्ष है, 13,000 योजन है राहु लोग, जो राहु रात में ग्रहण लगा था, उससे ऊपर है फिर 10,000 योजन, 12,000 योजन चंद्रमा चंद्रलोक, और उससे फिर 10,000 योजन ऊपर है सूर्यलोक, और वो सूर्य की किरणें यहां तक आ रही है, तब हम लोगों को इतनी गर्मी लगती है, वहां क्या होता होगा, बोले गर्मी जिधर दीप का मुंह होता है ना उधर लगती है, दीप के पीछे नहीं लगती, क्योंकि सूर्य पोषण के कारण है, तो सब जल के भस्म नहीं हो जाएंगे, तो किरण जिधर जा रही उधर गर्मी लगती है, पीछे शायद ठंडा ही होगा। तो ये जो 7 लोग आदि का वर्णन पूरे शास्त्रों में सांगो पांग वर्णन किया है, और ये सब परमेश्वर के स्थूल रूप का वर्णन है। जब तक हम उनके स्थूल रूप को नहीं जानेंगे तो सूक्ष्म जो आत्मदेव है परमात्मा, उधर पहुंचने का सबसे सरल तरीका है। कथाएं चलती है लेकिन उसका आध्यात्मिक विश्लेषण न करो तो पता नहीं चलता है कि इन कथाओं का अभिप्राय किस में है। तो सर्वेषां वेदांतानाम अद्वैत ब्रह्मणि एव तात्पर्यावसानम्, समस्त वेदांत शास्त्रों का अभिप्राय किस में है, अद्वैत ब्रह्म को बताने में। तो इसलिए जो उदाहरण दिया था विवेक चूड़ामणि के आधार पर कि संसारा ध्वनि ताप भानु किरणा, संसार के मार्ग में चलते चलते जैसे कोई व्यक्ति धूप में जलने लग जाए, उस समय एक पेड़ की छाया भी मिलती है तो हमारे लिए वह जीवन दान देने वाली लगती है। जैसे अभी बताया कि ठंडा या गर्म तभी हमें अच्छा लगता है जब हम गर्मी से परेशान होते हैं, ठंडी अच्छी लगती है, ठंडी से परेशान होते तो गर्मी अच्छी लगती है। वैसे जब संसार से परेशान होते हैं तब हमें कौन याद आते हैं? भगवान याद आते हैं। उससे पहले यदि बोलो भी ना कि भाई थोड़ा सत्संग किया करो, पूजा पाठ करो, महाराज घर में जो ये कर रहा हो ना घर का काम, ये भी तो भगवान की सेवा है। अरे वाह क्या बात है, घर के लोग आपको भगवान दिख रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन वो घर वाले भगवान कब तक हैं मालूम है? जब तक वो आपके अनुकूल हैं। जिस दिन कुछ आपको उल्टा सीधा बोल दिया सीधे भाग के ही आओगे और कहीं आपको जवाब मिलेगा नहीं इसका। तो गृहे दह्यमाने तत्रस्थो दह्यमान पुरुषो यथा कलत्र पुत्रादिकं परित्यज्य। पहले तो बोलते साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन जब ऐसे परेशानी आती है तो पहले हम अपना बचाव करते हैं, बाद में दूसरे की तरफ ध्यान जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो इस अज्ञान रूपी ताप को शांत करने के लिए जो तीव्र इच्छा है, उत्कट इच्छा, इसी का नाम क्या है? मोक्षेच्छा, मुमुक्षा। एवं सांसारिक ताप उपशमनम संपादयितुम त्यक्त सर्वैषणा। ऐषणा का मतलब कामना, समस्त कामनाओं का त्याग करने में। ये तीन तो मूल रूप से नाम गिनाया है, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, इसमें बाकी सारी कामनाएं आ जाती है, इसलिए अलग से गिनाने की जरूरत नहीं है। और एक दूसरे के पूरक है, लोकेषणा यदि होगी तो उसके लिए वित्तेषणा भी चाहिए। तो श्रुति में इसका पाठ आया या वित्तेषणा सा लोकेषणा, या लोकेषणा हाँ सा पुत्रेषणा, ये अलग अलग इसको मत मानना, ये सब जुड़े हुए ही हैं। कोई कहे ना ये ऐसना छोड़ देते, एक ऐसना रख लेते हैं, ऐसा नहीं। ऐसना मतलब कामना, जो कामना है वो बंधन में डालने वाली होगी। तो त्यक्त सर्वेषणा, सर्व जोड़ करके निषेध कर दिया कि ऐसना मात्र का जिसने त्याग कर दिया। और ब्रह्म तादात्म्य भावे, ब्रह्म में तादात्म्य होने के लिए अर्थात जीवात्मा और परमात्मा की एकता के लिए जो इच्छा होवे इसी का नाम है मोक्ष, मुमुक्षा। मोक्षे तीव्र इच्छा, मुमुक्षा। लोके केशांचित नित्यानित्य वस्तु विवेके सति अपि। अब यहां पर शास्त्रकार एक बात बता रहे हैं कि ये जो साधन चतुष्टय में चार चीजों को जो गिराया, इसमें चारों की आवश्यकता क्यों है? कोई कहे एक भी साधन हो जाए तो काम नहीं बन सकता है क्या? तो बोले नहीं। लोके केशांचित नित्यानित्य वस्तु विवेके सत्यपि। लोक में ऐसा देखा गया कि नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक हो जाने पर भी वैराग्यस्य अदर्शनादि, उसमें वैराग्य का अभाव हो सकता है। नित्य और अनित्य का विचार करके भी वैराग्य होगा ही ये कहना जरूरी नहीं है, ये होना जरूरी नहीं है। विवेक तो है लेकिन वैराग्य नहीं है। वो क्या बोलते हो, दुर्योधन था ना, जानामि धर्मम। हाँ तो यही तो है, विवेक तो था ही उसमें, जानता तो था कि धर्म क्या और अधर्म क्या है, लेकिन अपने प्रवृत्ति और निवृत्ति में स्वतंत्र नहीं था। तो यही समझ लेना चाहिए, हम लोग भी जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन मौका पे हम करते क्या है, किसका पक्ष लेते हैं, अच्छे का या बुरे का? प्राय जहां हमें अपना लाभ दिखता है, जानते हुए भी कि गलत है, फिर भी हम उसी का पक्ष लेते हैं। और पक्ष का मतलब क्या होता है? पंख। अपने पंख को जिधर टेढ़े कर दो, झुका दो, उसी का नाम हो गया पक्षपात। पंख को गिराया ना, उधर झुका दिया। और पक्ष तो है लेकिन पात नहीं है, तो उसका नाम हो जाएगा निष्पक्ष। पंख रहित नहीं है, पंख तो अभी भी है, अंदर मालूम है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन पात नहीं हुआ, हमने उसको झुकने नहीं दिया, न इधर न उधर, न्यूट्रल बन के बीच में रहना, यही है निष्पक्ष। और जो उल्टा चले उसका नाम है विपक्ष। हाँ यही तो है विपक्ष के नेता, उसका काम है सरकार की योजनाओं की आलोचना करना, तभी वो विपक्ष होगा। तो विपक्ष, निष्पक्ष, सपक्ष, अब हम लोगों को क्या बनना है? निष्पक्ष। निष्पक्ष कब होंगे? तो अनपेक्ष सुचिर दक्ष, अनपेक्ष अपेक्षा रहित होंगे तो निष्पक्ष होंगे। और यदि सापेक्ष, सपेक्षा है, अपेक्षा है किसी से, तो वहां जरूर कुछ न कुछ पक्षपात तो होगा ही। तो नित्य और अनित्य के विवेक करने वालों में भी वैराग्य का अभाव देखा गया है। वैराग्यस्य अदर्शनाद इह अमूत्र अर्थफल भोग विरागेनापि भवितव्यम् इति युक्तम्। इसलिए वैराग्य के अभाव में भी विवेक हो सकता है, लेकिन जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक वह विवेक किसी काम का नहीं। तद उभय सत्य भी यदि विवेक भी हो गया और वैराग्य भी हो गया, मान लो अब आगे जो समाधि सट संपत्ति है वह यदि नहीं है, तद उभय सत्वेपि केषांचिद ऋषि ईश्वराणाम कोपताप आदि दर्शन दर्शनात् समाधि नाम अपि भवितव्यम् इत्युक्तम्। कहते हैं विवेक भी है और वैराग्य भी है, तो किसमें? तो नाम गिना दिया ऋषिश्वराणाम, ऋषि और बाकी जो देवता आदि हैं, लेकिन उनमें यदि ये सट संपत्ति नहीं होगी, क्रोध आदि देखा गया उसमें, किसमें? विवेक वाले में और वैराग्य वाले में। जबकि क्रोध नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो अधिकारी होगा वेदांत का। देख लो कितनी बड़ी बात है। तो विवेक हो और वैराग्य न हो तो भी काम नहीं बनेगा, विवेक भी हो वैराग्य भी हो फिर भी काम नहीं बनेगा, इसके लिए सट संपत्ति का होना भी जरूरी है। एतत् त्रितये सति अपि, तीनों हो गए मान लो, विवेक वैराग्य और सट संपत्ति भी हो गई। इससे कई लोग ऐसे होते हैं, तो भक्ति ईश्वरोपासकानाम, जिसमें ये तीन चीजें हैं विवेक वैराग्य और समाधि सट संपत्ति, ऐसे जो भक्ति करने वाले ईश्वर के उपासक जो भक्तगण हैं, ज्ञान अधिकार अदर्शनात, उनके अंदर भी ज्ञान के अधिकार का दर्शन नहीं देखा गया, अर्थात ज्ञान में वो भी प्रवृत्त नहीं हो पाते, उनकी वृत्ति वहीं तक रहती, अपना पूजा पाठ कर लिया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये सब चिंतन क्या करना है। इसलिए मुमुक्षा का होना भी जरूरी है। जब तक ये इच्छा नहीं होगी तब तक वह अध्यात्म शास्त्र श्रवण करने में, अर्थात श्रवण मनन आदि में उसकी प्रवृत्ति होगी नहीं। और ये सबसे मूल बात वहां याद रखना, अनुबंध चतुष्टय में जो अधिकारी बताया था ना, उस अधिकारी का इतना बड़ा लक्षण किया, अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय, ये तो अच्छी तरह से याद रहेगा ना आप लोगों को। अनुबंध चतुष्टय क्या क्या है? हाँ, अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन। तो इसको क्रम से याद रखना है, विषयश्च अधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम अनुबंधम बिना ग्रंथे मंगलम नैव शस्यते। और साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, विषय है ब्रह्म, प्रयोजन है मोक्ष, संबंध है प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव, बोध्य और बोधक भाव। ऐसे अनुबंध चतुष्टय पूर्वक शास्त्र में प्रवृत्त होने के बाद फिर विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षा, जब ये सब हो गए, अब वह व्यक्ति, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाली बात है, कहां जाएगा? तो गुरूपसत्ति, गुरूपसदन, उपसदन विधि, वही जा सकता है किसी महापुरुष के पास जिसने ये सारी चीजों को, सारे साधनों को अपने अंदर अपना लिया। एवं रूप अधिकारी उपहार समित पाणि सन सद्गुरुम उपगम्य नमस्कृत्य विश्वास विनयाभ्याम। दो बातें हैं, सह हे स्वामिन, हे भगवन गुरु, इति संबोध्य जीव कह ईश्वर कह जगत की दृशम एतत् त्रितयम् कस्माद् आगतम् कस्माद् गमिष्यति इति प्रश्नम् कुर्यात्। अब आप लोगों को यदि अध्यात्म में कैसे प्रश्न किया जाता है जानना हो तो ये लघु वासुदेव मननम में आया है कि प्रश्न कैसा होना चाहिए। कई बार लोग बिना सिर पैर के भी प्रश्न करते हैं, तो साधकों का प्रश्न कैसा होना चाहिए इसके ऊपर आचार्य ने यहां जोर दिया। एवं रूप अधिकारी, इस प्रकार का जो अधिकारी होगा साधन चतुष्टय से संपन्न, उपहार समित पाणी, हाथ में कुछ उपहार लेकर के जाए, सदगुरुम उपगम्य, सदगुरु के समीप जाए और नमस्कृत्य, नमस्कार करके क्या करे तो विश्वास और विनयाभ्याम। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी समित पाणी संविधा होगी नहीं, विश्वास और विनय। कई बार हम विश्वास तो करते हैं, नम्रता नहीं होती, तो इसलिए दोनों को जोड़ दिया, नम्रता पूर्वक और विश्वास पूर्वक। सह मतलब विश्वास और नम्रता के साथ संबोधन करें उस महापुरुष के लिए, गुरु के लिए। हे स्वामिन, हे भगवान और हे गुरु, ये संबोधन है। इति संबोध्य, ऐसा संबोधन करके अब जो प्रश्न है वो क्या है, जीव कह, जीव कौन है, जीव किसको कहते हैं, ईश्वर कह, ईश्वर कौन है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, और जगत की दृशम, ये जगत कैसा है, एतत् त्रितयम् कस्मात् आगतम्, ये जो तीनों हैं जीव ईश्वर और जगत कैसे आए, कहां से आए, और कस्माद् गमिष्यति, और ये जाएंगे कैसे, इति प्रश्नम कुर्यात्। याद रहेगा ये तीन प्रश्न, जीव कह, ईश्वर कह और जगत की दृशम, की दृशम कैसा है, किस प्रकार का है। संस्कृत में की दृशम मतलब किस प्रकार का, बोलते ईदृशम, इस प्रकार का, उसकी तरह तादृशम, इसकी तरह एतादृशम, ऐसा शब्द बनता है, एतादृशम, तादृशम, कीदृशम, ईदृशम, तो जगत कीदृशम, तो जीव जगत और ईश्वर के विचार करने के लिए ही जो अधिकारी होगा उसके प्रश्न ही यही होंगे। उसका प्रश्न ये नहीं होगा कि बारिश होगी कि नहीं ये बता दो, ये कोई प्रश्न नहीं है। बोले जब आपको बारिश होगी कि नहीं होगी नहीं पता है तो मोक्ष कैसे मिलेगा, बताओ, ये बिना सिर पैर के प्रश्न है ना, हमारे हाथ में क्या है बता सकते हो, तो ये सब प्रश्न निरर्थक है। यहां यही प्रश्न होना चाहिए कि जीव कह, ईश्वर कह और जगत की दृशम, संबोधन करे हे स्वामिन, हे गुरु और हे भगवान, ये संबोधन करके जब प्रश्न तीनों करेंगे तो परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरु एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडकोपनिषद का उदाहरण है और गीता में भगवान ने जो कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। लोग क्या समझते हैं कि एक दो वहां कहा, बहुवचन का प्रयोग किया है, बहुवचन में दोनों बातें आती है, बड़ों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, अथवा जो जो ज्ञानी होंगे उन ज्ञानियों से तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ये भी अर्थ होता है। क्योंकि जब आप ज्ञानियों के बीच में रहोगे तो किसी से पंचदशी सुनोगे, किसी से तत्वबोध सुनोगे, किसी से गीता सुनोगे, तो बातें तो सब वही कर रहे हैं ना घुमा फिरा के। आप लोगों को कभी ऐसा कंटाल तो नहीं होता, बंबई की भाषा में भरूच में क्या हुआ, कोई बता रहा था, मेरा अनुभव तो नहीं है, किसी ने सुनाया, बोले कोई सज्जन थे, शुरू शुरू में उनकी भी इच्छा हुई कि कथा सुनने जाता हूं, तो शायद एक महीना भी नहीं सुना होगा, नहीं दो तीन महीने सुना उसने, तो दो तीन महीने में तीन वक्ता आ गए, तो चौथे महीने से उसने कथा सुनना छोड़ दिया। किसी ने पूछा, भाई तुम आजकल कथा सुनने नहीं आते? बोले, क्या सुनने जाए, जो आते सब एक ही बात करते हैं। तो उसकी इच्छा क्या थी कि सब लोग आए तो अलग अलग बातें करें। ये हो नहीं सकता, विषय तो अलग अलग होंगे, प्रतिपादन करने के ग्रंथ जो हैं ये लघुवासुदेव मननम है। हो सकता है अगला वक्ता कोई दूसरा विषय रखे, उनसे अगला वक्ता कुछ दूसरा सुनाएंगे। पीछे आपने गीता के 13वें अध्याय श्रवण किया, तो ये तो विषय के नाम अलग अलग हैं, लेकिन जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है वो तो एक ही है ना, उसमें तो कोई भेद नहीं है। अब वो क्या चाह रहा है कि जिसका प्रतिपादन किया जाए वो अलग अलग होना चाहिए, ये कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए उसने सत्संग करना ही छोड़ दिया। यहां तो एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, बोलने वाले तो बहुत सारे विद्वान लोग हैं, लेकिन सब बोल क्या रहे हैं, एकम सद, एक ही सत्य परमात्मा है। जबकि हमारे देवी देवताओं के माध्यम से हिंदू धर्म के बारे में लोग मखौल भी उड़ाते हैं, इनके यहां इतने बहुत सारे देवी देवता हैं, हमारे यहां तो एक ही है। हम उनको बोलते हैं, हमारे यहां अनेक में एक है, बहुदेव में एक देव है। इस बात को जो नहीं जानते वे लोग भले ही 33 करोड़ देवता आदि को लेकर उपहास उड़ाते हैं, हमारे यहां 33 करोड़ देवता, एक प्रधानमंत्री के साथ भी बहुत सारे मंत्रालय हैं, मंत्री है, उससे भारत देश अलग अलग थोड़े हो गया। भारत देश तो एक ही है, मंत्री अलग अलग हैं, तो देवता सब अलग अलग हैं, लेकिन सब उसी परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। इस बात को यदि वो नहीं समझते या हम समझा नहीं पाते, तभी वो हिंदू के बारे में सब उत्पटांग बोलते हैं। तो बहुदेववाद में एक देववाद, अनेकता में एकता, अनेक शास्त्रों के द्वारा एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, इसी का प्रतिपादन होता है। ये समाधान जहां हो ऐसे महापुरुष के पास जाकर कैसे प्रश्न करके उसका उत्तर जो हमें मिलता है और उस उत्तर से हमारा जीवन कैसे होगा, ये फिर विचार करेंगे कल। ओम।